पुस्तक सामर्थ्य के साथ सुसमाचार की घोषणा करना, लेखक रॉबर्ट प्रकाश, अध्याय 3, राज्य का सुसमाचार, उद्धार के लिए छुटकारा। पश्चिम पंजाब के एक गांव से दूसरे गांव में सफ़र करने के दौरान मैं एक छोटे से शहर में अपने कुछ दोस्तों से मुलाकात करने और वहां के स्थानीय पास्टर्स को प्रशिक्षण देने के लिए रुका। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था, पर पवित्र आत्मा रास्ता तैयार कर रहा था मेरी मुलाकात किसी एक जन से कराने के लिए, ताकि वहाँ पवित्र आत्मा अपने आप को उस व्यक्ति पर प्रकट कर सके। उस शहर में एक पढ़ा लिखा हिंदू व्यक्ति रहता था, दर्द और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित था। उसकी छाती और सिर में बहुत दर्द बना रहता था। डॉक्टरों ने तमाम जाँच की, लेकिन किसी भी जाँच में कुछ ना निकला। और भी जाँच हुई और अंत में डॉक्टरों ने कहा कि उसके लक्षण वास्तविक नहीं हैं और उसकी यह बीमारी उसके स्वयं की सोच और कल्पना की उपज है। उसकी बीमारी के लक्षण बने रहे और आत्महत्या, खुदकुशी करने के विचार और इच्छा उसे सताती रहती थी। उसकी इच्छा होती थी कि आत्महत्या कर ले, और उसने कब का अपने आप को ख़त्म कर लिया होता, परंतु यह चिंता कि उसके मरने के बाद उसके परिवार, बच्चों का क्या होगा, ऐसे ही विचार उसे आत्महत्या करने से अभी तक रोके हुए थे। कुछ महीनों तक वह इन विचारों से जूझता रहा और उसके बाद उसके अंदर एक झूठी शांति आ गई और अपने आप को ख़त्म कर लेने की इच्छा उसके अंदर और बलवंत होती चली गई या बढ़ती गई। भयभीत होकर उसने मनोचिकित्सक के पास जाने का फैसला किया। जिस सुबह वह मनोचिकित्सक के पास जाने को निकला, रास्ते में ही उसकी मुलाकात अपने एक मित्र से हुई जो कि एक मसीही विश्वासी था। बातचीत के दौरान वह अपने आप को रोक ना सका और उसने अपने इस विश्वासी मित्र को अपनी समस्या बताई और यह भी बताया कि वह इस समय कहाँ जा रहा है। उस विश्वासी मित्र को पता था कि मैं उस दिन उसके शहर में हूँ और उसने उससे निवेदन किया कि वह मनोचिकित्सक को दिखाने से पहले वह मुझसे ज़रूर मिल ले। उस दिन वह व्यक्ति मुझसे मिला। उससे मुलाकात करने और उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने बड़े भरोसे के साथ उसे जवाब दिया, आज यीशु तुम्हें इस पीड़ा और सताव से आज़ाद करने जा रहा है। मैंने उसे यह सब नहीं समझाया कि कैसे और क्यों ये सब होगा, और तुरंत आगे बढ़कर मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, सताने और पीड़ित करने वाली आत्माओं को बांधा और उन्हें निकल जाने की आज्ञा दी। क्षण भर में उसकी बीमारी के सभी लक्षण चले गए। दिमाग में जो संघर्ष चल रहा था और शारीरिक समस्या के लक्षण सब गायब या खत्म हो गए। अब सच्ची शांति और आज़ादी उसे महसूस हो रही थी। वह चकित था यह सब अनुभव करके, और उसके बाद मैंने राज्य का सुसमाचार उसे सुनाया और उसी समय उसने अपना सिर प्रार्थना में झुकाया और उद्धार प्राप्त करने के लिए यीशु को पुकारा। राज्य की परिभाषा। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए राज्य का विचार, आइडिया ऑफ किंगडम, एक बाहरी विचार है, इसलिए कि राज्य आत्मिक और अनदेखा भी है। आइए राज्य की परिभाषा जानने के साथ हम शुरुआत करते हैं। राज्य वो होता है जहाँ राजा का राज्य होता है, एक ऐसा प्राण जहाँ सिर्फ राजा की इच्छा पूरी होती है या सर्वोपरि होती है। हालांकि इस संसार में बहुत से राज्य हैं, राष्ट्र हैं, जहाँ मनुष्य शासन राज्य करते हैं, परंतु यदि हम आत्मिक क्षेत्र की बात करें तो केवल दो ही प्रकार के आत्मिक राज्य पाए जाते हैं। ये दोनों राज्य एक दूसरे के विरोध में या खिलाफ में और एक दूसरे से बिल्कुल अलग विपरीत हैं। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य एक ही है। यहाँ तालिका के माध्यम से हम दो राज्यों की तुलना करेंगे। राज्य पहला परमेश्वर का राज्य, दूसरा शैतान का राज्य। परमेश्वर के राज्य का राजा यीशु है, शैतान के राज्य का राजा शैतान है। परमेश्वर के राज्य की सेना आज्ञाकारी, विश्वासी और सरदूत हैं। शैतान के राज्य की सेना हिंसक, सताने वाले, अविश्वासी और दुष्टात्माएं हैं। परमेश्वर के राज्य की नागरिक निष्क्रिय विश्वासी हैं। शैतान के राज्य के नागरिक अविश्वासी हैं। परमेश्वर के राज्य की संस्कृति प्रेम, दया, अनुग्रह, धार्मिकता और सच्चाई है। शैतान के राज्य की संस्कृति स्वार्थ, मतलबीपन, घृणा, नफरत, लालच, बदला लेना और झूठ है। परमेश्वर के राज्य का प्रगटीकरण जीवन, चंगाई, तंदुरुस्ती, आशा, शांति, मेल मिलाप और आशीष है। शैतान के राज्य का प्रगटीकरण मृत्यु, बीमारी, दर्द, पीड़ा, निराशा, सताव, कलह और श्राप है। जहां भी आत्मिक राज्य की प्रभुता होगी, वहां पर हमेशा अलग अलग तरह के प्रगटीकरण दिखाई देंगे। जहां कहीं भी राज्य का सुसमाचार विश्वास के साथ सुनाया और प्रचार किया जाएगा, वहां पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे। राज्य का सुसमाचार सुनाए जाने या प्रचार किए जाने और राज्य के प्रगटीकरण बीमारियों, दुष्ट आत्माओं और मृत्यु के ऊपर प्रभुता के बीच में एक गहरा संबंध है। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों को और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। मत्ती 4:23-24। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती 9:35। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है सेत में दो। मत्ती 10:7-8। फिर उसने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। 9:1-2। और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। प्रेरितों के काम 8:5-7-12। हम राजा यीशु की इच्छा को कैसे पहचानते या जानते हैं? जब हम उपरोक्त वचन के पदों को पढ़ते हैं तब हमें इसका उत्तर मिलता है। जब हम यीशु के बताए तरीके के अनुसार प्रार्थना करते हैं तब हमें उसकी इच्छा का पता चलता है। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। मत्ती 6:10। यह पद यीशु की इच्छा को साफ साफ और स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो कुछ स्वर्ग में प्रकट होता है वही सब पृथ्वी पर भी प्रकट हो। स्वर्ग में कोई रोग, बीमारी, मृत्यु, शाप या पाप नहीं पाया जाता है। जो कुछ स्वर्ग में नहीं पाया जाता है वह सब पृथ्वी पर भी नहीं पाया जाना चाहिए। और जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा तब कोई भी वह चीज़ जो स्वर्ग में नहीं पाई जाती है वह पृथ्वी पर भी नहीं पाई जाएगी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से मनुष्य को इस पृथ्वी पर प्रभुता करने का अधिकार दे रखा है। उत्पत्ति 1:28, भजन संहिता 115:16। मनुष्य के पाप के कारण शैतान ने मनुष्य को धोखा देकर पृथ्वी पर प्रभुता करने का अधिकार मनुष्य से छीन लिया। रोमियो 6:16। और जगत के राज शैतान के अधिकार में आ गए और उसके हो गए। 4:5-6। यीशु मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि मनुष्य के पृथ्वी पर प्रभुता करने के उस खोए हुए अधिकार को मनुष्य के लिए फिर से वापस हासिल करे और इस पृथ्वी पर अपनी कलीसिया के द्वारा फिर से परमेश्वर के राज्य को स्थापित करे। फिलिपियों 2:5-11। हिंदी बाइबल में जो मत्ती 16:19 का अनुवाद हुआ वह मूल यूनानी भाषा के अनुसार सही नहीं हुआ। जैसा मूल भाषा में है वैसे ही मैंने नीचे अनुवाद किया। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में पहले से बंधा हुआ होगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में पहले से खुला हुआ होगा। राज्य के प्रगटीकरण के लिए यीशु के द्वारा दिया गया नमूना। जैसा कि आप वचन के निम्नलिखित पदों को पढ़ते हैं तो ध्यान दें कि यीशु ने बताया है कि किस प्रकार से दो राज्य में आपस में संघर्ष चलता रहता है। जब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। मत्ती 12:22-28। आइए अब हम परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने वाली तीन कारकों, फैक्टर्स को देखते हैं। तीन कारक हैं, प्रतिनिधि, अधिकार और सामर्थ। प्रतिनिधि, परमेश्वर के राज्य और अंधकार के राज्य दोनों ही को तलाश होती है किसी ऐसे मानव प्रतिनिधि की जो कि उसकी इच्छा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। यह मानव प्रतिनिधि वह माध्यम या जरिया है जिसके द्वारा राज्य की आत्मा अपने आप को प्रकट करती है। अधिकार, आदम के मूल पाप ने शैतान को सारा अधिकार दे दिया, इसलिए पाप और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गए। रोमियो 5:12। यीशु ने पिता के प्रति समर्पित जीवन जिया और अपने अधिकार का उसने इस्तेमाल किया। यीशु ने दुष्टात्मा को निकाले जाने का आदेश देने के द्वारा अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। उस व्यक्ति के अंधे और गूंगे होने का कारण वह दुष्टात्मा थी। आत्मा, राज्य का आत्मा, परमेश्वर के राज्य के लिए पवित्र आत्मा और अंधकार के राज्य के लिए दुष्ट आत्माएं मानव प्रतिनिधि के अधिकार का इस्तेमाल करके अपना प्रगटीकरण करती और अपने आप को जाहिर करती हैं। दुष्ट आत्माएं बीमारी, पाप, शाप और मृत्यु को प्रकट करती है। पवित्र आत्मा चंगाई, धार्मिकता और जीवन को प्रकट करता है। उपर्युक्त घटना में हम देखते हैं कि उस मनुष्य के अंधेपन और बहरेपन का कारण एक अदृश्य दुष्ट आत्मा थी, परंतु पवित्र आत्मा ने चंगाई को प्रकट किया और उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा के बंधन और सताव से आजाद किया। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। हमें परख कर पहचानना है कि क्या परमेश्वर के राज्य की ओर से है या क्या परमेश्वर के राज्य की ओर से नहीं है। और जो बातें परमेश्वर के राज्य की ओर से नहीं हैं उसका सामना हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के द्वारा करना चाहिए। हमें विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हुए अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और तब हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर के राज्य को चंगाई, चिन्ह, चमत्कार और छुटकारे के साथ प्रकट करते हुए देखेंगे। अंधकार का सामना करना। राज्य का सुसमाचार संदेश सीधे सीधे अंधकार का सामना करता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य की घोषणा करता है तो शैतान घबरा जाता है। जब यीशु राज्य का प्रचार घोषणा करते थे तो अक्सर दुष्टात्माएं अपने आप को प्रकट करती थीं। मरकुस 1:21-28। राज्य का सुसमाचार शैतान को लज्जित करने और नीचा दिखाने का मंच तैयार कर देता है। और जब हम राज्य के सुसमाचार की घोषणा करते हुए स्वर्ग के राज्य को प्रकट करते हैं तो दुष्ट के कार्य हमारी आंखों के सामने ध्वस्त नष्ट होते जाते हैं। कुछ समय पहले मैं ताइवान में था और वहां पर लिविंग वाटर चर्च में प्रचार कर रहा था। मैंने राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया और ज्ञान के वचन जो पवित्र आत्मा ने प्रकट किए थे मैंने लोगों को बताए और लोगों को कहा कि वे जो अवस्थाएं, समस्याएं मैं इस समय बताई हैं वैसी अवस्था वाले लोग सामने आ जाएं। एक महिला मेरे पास आई जिसे कैंसर था। मैंने पवित्र आत्मा को आमंत्रित किया और सताने वाली आत्माओं को उसे छोड़कर चले जाने की आज्ञा दी। वह तुरंत झुकी और जोर जोर से खांसने लगी। वह जोर लगाकर सांस लेने लगी। कुछ देर की प्रार्थना के बाद वह उठ खड़ी हुई और उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस किया जैसा कि कोई चीज़ उसके अंदर से निकल कर बाहर गई है और अब वह अपने शरीर में बहुत हल्कापन महसूस कर रही है। उसके पेट के निचले हिस्से में जो दर्द था वह भी चला गया था और अब वह महसूस कर रही थी कि वह कैंसर के रोग से मुक्त और चंगी हो चुकी थी। एक और महिला सामने आई जिसे कई सालों से ठीक से नींद ना आने, अनिद्रा की बीमारी थी। मैंने उससे मेरी ओर देखने को कहा और मैंने आज्ञा दी, सताने वाली अनिद्रा की दुष्टात्मा, मैं तुझे बांधता हूँ और कहता हूँ निकल जा। जैसे ही ऐसा कहा उस महिला की आंखें भाव शून्य हो गईं, उसका शरीर निढाल हो गया और वह सामने की ओर गिर पड़ी। मैंने उसकी चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना जारी रखी। इसके बाद एक व्यक्ति को उसके कुछ विश्वासी मित्र सामने लेकर आए। यह व्यक्ति प्रभु में एक नया विश्वासी था। उसने बताया कि जब से उसने यीशु पर विश्वास किया है, तब से दुष्ट आत्माएं उसे सता रही हैं और उसके लिए रुकावटें उत्पन्न कर रही हैं। जन्म के समय ही इस व्यक्ति को मूर्तियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया था। अब वही दुष्ट आत्माएं इस व्यक्ति पर फिर से कब्जा, नियंत्रण हासिल करने के लिए लड़ रही थीं। हियाव के साथ मैंने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और मैंने दुष्ट आत्माओं को डांटा। उस व्यक्ति का शरीर ऐंठने लगा और वह उल्टी करने लगा। इसके बाद वह आज़ादी महसूस कर रहा था और हल्कापन और शांति और तसल्ली भी महसूस कर रहा था। अगला व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा था, वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उसकी पिछले कई सालों के सताव और पीड़ा का वर्णन कर रहे थे। अचानक पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट करना शुरू कर दिया कि बचपन में वह मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक शोषण से होकर गुजरा है, और मैंने परमेश्वर के प्रेम और उसकी उपस्थिति के बारे में इस व्यक्ति को बताना आरंभ कर दिया। वह व्यक्ति रोने लगा। उसे सताने वाली दुष्ट आत्माओं को मैंने बांधा और तुरंत उसे अपने अंदर तसल्ली और राहत महसूस होने लगी। मनुष्य को लाचार, असहाय बना देने वाली सभी चीज़ें अंधकार के राज्य के कारण होती हैं। राज्य का सुसमाचार सुनने वालों को छुटकारे के लिए तैयार करता है, वातावरण को अलौकिक ईश्वरीय गतिविधियों से भर देता है और विश्वासी को विश्वास का कदम बढ़ाने के लिए तैयार करता है। पंथ निरपेक्ष मसीहियत। पाश्चात्य मसीहियत में पूर्वी संस्कृति की तुलना में चीज़ों को आत्मिक दृष्टिकोण, नज़रिए से देखने की कमी पाई जाती है, और पाश्चात्य मसीहियत में दुष्ट आत्माओं के अस्तित्व और कार्यों पर कम ध्यान दिया जाता है। वहाँ इस बारे में कम सोचा जाता है कि हमारी समस्याओं और बीमारियों के लिए दुष्ट आत्माएँ जिम्मेदार, और इन लोगों का यह मानना है कि हमारी समस्याएँ महज सैद्धांतिक होती हैं, और यह सोच विचार कि हमारी समस्याएँ दुष्ट आत्माओं के कारण होती हैं, हमारी उन्नति विकसित बुद्धिमता का अपमान है। पाश्चात्य कलीसिया ने मेडिकल साइंस अर्थात औषधिक विज्ञान को परमेश्वर के वचन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना है। वह विज्ञान उन्होंने अपनाया है जो कि दुष्ट आत्माओं के द्वारा मनुष्य के उत्पीड़न की धारणा को खारिज करता है। कोई भी व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के कार्यों की पुष्टि करता है या फिर यह कहता है कि मनुष्य की भावनात्मक और शारीरिक समस्याएं बीमारी का स्रोत आत्मिक शाप है, तो उसे विरोध और मजाक का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग कलीसिया में ऐसे होते हैं जो कि दुष्ट आत्माओं के अस्तित्व पर तो विश्वास करते हैं, परंतु उन्हें दुष्ट आत्मा का सामना करने के लिए जो सामर्थ्य और प्रकाशन पवित्र आत्मा हमें देता है, उस सामर्थ्य और प्रकाशन के विषय में कुछ भी ज्ञान, समझ और पता नहीं होता है। हमारी सभ्यता के विकास और उन्नति के साथ साथ हमने इस बात को भुला दिया है कि सुसमाचार में शैतान को और उसके कार्यों को नाश करने और बड़े बड़े चमत्कार करने की सामर्थ्य है। हमने सुसमाचार को समय के साथ साथ शैतान को नाश करने और चमत्कार करने की सामर्थ्य से विहीन कर दिया और समझा है कि सुसमाचार सिर्फ मनुष्यों को अनंत जीवन प्रदान करने की कुंजी मात्र है। मित्रों, मुझे गलत ना समझें, अनंत जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण और महान आशीष है, परंतु यदि हम सुसमाचार प्रचार के दौरान या सुसमाचार में से चंगाई और छुटकारे जैसी खूबियों को निकाल देते हैं, तो ऐसा करने के द्वारा हम सुसमाचार को खोए और भटके हुओं के अनंत उद्धार तक महज सीमित कर देते हैं, और सुसमाचार को उसकी चंगाई और छुटकारा देने वाली सामर्थ्य से रिक्त, खाली और वंचित कर देते हैं। चाहे हम परमेश्वर के वचन में देखें, चाहे इतिहास को खंगाल कर देखें, हम एक बात जो देखते हैं परमेश्वर के वचन और इतिहास में, वह यह है कि जहाँ कहीं भी सुसमाचार प्रचार के साथ साथ चंगाई, चमत्कार और दुष्ट आत्माओं से, बहुतायत से छुटकारे आदि प्रकट होते हैं, वहाँ बहुत अधिक संख्या में लोग यीशु पर विश्वास लाते और उद्धार पाते हैं। कोई भी कलीसियारोपण अभियान, चर्च प्लांटिंग मूवमेंट ना कभी चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्मों के बिना शुरू हुआ है, और ना ही चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म के बिना कभी आगे बढ़ा है। थोड़ा समय निकालकर वचन के निम्नलिखित पदों को अवश्य पढ़ें, यूहन्ना 6:2, लूका 6:17-19, लूका 8:2, प्रेरितों के काम 5:12-16, और 9 का 32 से 42, प्रेरितों के काम 28 का 8 से 9। अधिकतर पाश्चात्य कलीसियाओं में राज्य का सुसमाचार प्रचार नहीं किया जाता है, वहां महज उद्धार का संदेश प्रचार किया जाता है। मुझे इसे समझाने की अनुमति दें। उद्धार का संदेश केवल पापों की क्षमा और अनंत जीवन की मनुष्य की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। यहाँ सिर्फ दो पक्षों को प्रस्तुत किया जाता है, परमेश्वर और पापी मनुष्य। परमेश्वर हमारी विकट परिस्थितियों और समस्याओं से ऊपर है और उन्हें वर्तमान में बदलने की क्षमता रखता है, परंतु उद्धार के संदेश में यह नहीं बताया जाता। न शैतान को संबोधित किया जाता है और न ही उसका सामना और मुकाबला किया जाता है। चंगाई की उम्मीद, छुटकारा और अद्भुत ईश्वरीय सामर्थ्य के कार्यों का जिक्र ही नहीं किया जाता है। राज्य का संदेश मनुष्य की समस्त आत्मा, प्राण और देह, शरीर की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अंधकार के राज्य के द्वारा प्रभावित सभी मानवीय आवश्यकताओं को राज्य का संदेश संबोधित करता है। मत्ती 13 का 19, मत्ती 13 का 24 से 25 और 47 से 39, इफिसियों 6 का 12। मनुष्य न सिर्फ एक पापी है जिसे पापों से क्षमा की आवश्यकता है, परंतु वह शैतान के अधिकार में है और उसका गुलाम है। प्रेरितों के काम 26 का 18, यह संदेश परमेश्वर की उपस्थिति की घोषणा करता है और यह घोषणा करता है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य की आत्मा, प्राण और देह अंधकार और शैतान के अधिकार से और पापों के प्रभाव से आजाद हो, और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा मनुष्य की आत्मा, प्राण और देह को शैतान के अधिकार से छुटकारा प्रदान करता है। गलातियों 1 का 4, कुलुसियों 1 का 13, चंगाई और छुटकारे जैसे ईश्वरीय प्रगटीकरण परमेश्वर के हृदय को प्रकट करते हैं और यीशु की वास्तविकता को स्थापित करते हैं और राज्य के संदेश को सही और सत्य साबित प्रमाणित करते हैं। मरकुस 16 का 20, यीशु ने हमें आदेश दिया है कि हम राज्य का प्रचार करें। लूका 9 का 2, 10 का 19, और यह वादा किया है कि राज्य का संदेश, सुसमाचार सभी जातियों के लिए एक गवाही होगा और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती 24 का 14, यहाँ पर यीशु किस गवाही की बात कर रहे हैं? यहाँ उन अलौकिक चिन्ह, आश्चर्य कर्मों, चंगाई और चमत्कारों की बात हो रही है जो कि तब प्रकट होते हों जबकि हम राज्य के सोच और नजरिए के साथ राज्य का संदेश, सुसमाचार प्रचार करते हैं। रोग नियंत्रण केंद्र, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के द्वारा दिए गए इन आंकड़ों पर जरा ध्यान दें। 10 में से 6 लोगों में जीर्ण रोग, पुरानी एवं लंबी बीमारी पाई जाती है। 10 में से 4 लोगों में 2 या 2 से अधिक बीमारियां पाई जाती हैं और प्रत्येक 4 में से 1 व्यक्ति में चिंता विकार, एंग्जाइटी डिसऑर्डर और अवसाद, डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग पाए जाते हैं। अधिकतर अविश्वासियों को आत्मिक रीति से इस बात का पता आभास नहीं होता कि उन्हें क्षमा और परमेश्वर से मेल मिलाप की आवश्यकता जरूरत है। उन्हें उद्धार का संदेश सुनाना ठीक किसी बहरे को प्रचार करने जैसा ही है, परंतु अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं, जरूरतों का सभी को पता होता है। और जब राज्य का संदेश, सुसमाचार उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करता और पूरा करता है तो बड़ी संख्या में लोग यीशु पर विश्वास लाते हैं। खोए और भटके हुए लोगों के कारण हमें राज्य के संदेश, सुसमाचार को अपनाना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। राज्य के सुसमाचार संदेश के पहलू या स्वरूप। पहला बिंदु, अलौकिक, सुपरनैचुरल। परमेश्वर और उसका राज्य अलौकिक है, इसलिए राज्य का सुसमाचार लोगों के अंदर अलौकिक और अद्भुत कार्यों के प्रकटीकरण की उम्मीद पैदा करे। परमेश्वर का राज्य केवल स्वर्ग तक ही सीमित नहीं है, वह स्वर्ग से परे इस पृथ्वी पर भी अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। यीशु ने अक्सर राज्य का सुसमाचार सुनाने के दौरान या उससे पहले या उसके बाद में अलौकिक कार्यों को प्रकट किया। लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में हम देखते हैं, राज्य का उपदेश सुनाने के बाद यीशु ने पतरस से समुद्र में जाल डालने के लिए कहा। ऐसा करने पर बहुत सी मछलियां जाल में फंसीं और उनके जाल फटने लगे और भार के कारण नावें डूबने लगी। अलौकिक कार्य। राज्य का उपदेश शिक्षा देने के बाद यीशु ने 5,000 पुरुषों को भोजन खिलाया। मरकुस 6 का 34 से 44। आत्मा का प्रकटीकरण। दर्शन देखना, परमेश्वर और उसके आत्मा की उपस्थिति से भर कर उमड़ना, अलौकिक सामर्थ्य और उपस्थिति का अनुभव करना, ये सब राज्य के पहलू हैं। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। 1 कुरिन्थियों 2:4-5। दूसरा बिंदु, अनुग्रह पर आधारित सुसमाचार। यह एक शुभ समाचार है, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से भरा समाचार। जब समस्त मानव परमेश्वर से दूर हो गया, सबने अपना अपना मार्ग चुन लिया, अपना लिया और अंधकार में खो गए, तब यीशु अपनी आंखों में दया लिए हुए हमें खोजता हुआ हमारी ओर दौड़ता हुआ चला आया। हमें पश्चाताप करने, मन फिराने और अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी भलाई हमारे सीमित सोच और कल्पना से कहीं अधिक और परे है। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। 1:14-15। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दें। 1 लूका 12:32। तीसरा बिंदु, बीमारी, दुष्टात्माओं और मृत्यु के ऊपर प्रभुता। परमेश्वर स्वर्ग का राज्य बीमारी, मृत्यु और अंधकार की शक्ति के विरोध में है, और जहाँ कहीं भी विश्वास और पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण पाया जाता है, वहाँ पर वह बीमारी, मृत्यु और अंधकार की शक्तियों पर प्रबल और जयवंत होता है। शारीरिक चंगाई, चमत्कार और दुष्टात्माओं को निकालना प्रथम चिन्ह थे जो यीशु और उससे मानने वालों ने प्रकट किए। चौथा बिंदु, ईश्वरीय आमंत्रण, न्योता। परमेश्वर सिर्फ आमंत्रण करता है, वह हमारी इच्छा के विरोध में हमें मजबूर नहीं करता है। राज्य का सुसमाचार महज एक बेहतर, उत्तम राज्य का अनुभव करने और उस राज्य में जीवन जीने का आमंत्रण है। हमारी प्रतिक्रिया एक सक्रिय और क्रियाशील विश्वास की होती है। 11:12, 10:10-11। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ध्यान देने के लिए व्यवहारिक प्रश्न। 1, इस अध्याय को पढ़ने से पहले तक आपके विचार में राज्य के सुसमाचार की परिभाषा क्या थी? 2, किस प्रकार, कैसे और क्यों राज्य का सुसमाचार भौतिक क्षेत्र पर प्रभाव डालता है? 3, स्वर्ग, परमेश्वर के राज्य के मुख्य दिखाई देने वाले चिन्ह कौन से हैं? 4, जहां कहीं भी ईश्वर उसके चेलों ने राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, वहां पर कौन से कार्य हमेशा देखने को मिले? 5, परमेश्वर का राज्य किस तरह से, कैसे प्रकट होता है? 6, प्रभु में बढ़ने, आत्मिक उन्नति के दौरान कौन सा संदेश आपने ज्यादा सुना, उद्धार का संदेश या फिर राज्य का संदेश? कौन सा संदेश आपने दूसरों को सुनाया? 7, राज्य का संदेश, सुसमाचार सुनाने पर क्यों उद्धार का संदेश सुनाने की तुलना में अधिक लोग उद्धार और अनंत जीवन पाते हैं, कारण बताइए। 8, क्या आपकी संस्कृति में लोग राज्य का संदेश ज्यादा आसानी और सहजता से समझ पाते हैं? यदि नहीं, तो क्या आप राज्य के सुसमाचार संदेश का कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जो कि सांस्कृतिक रूप से अधिक उपयुक्त, सही और ज्यादा कारगर हो? समझाइए कि क्यों हमारी संस्कृति हमें राज्य का संदेश सुसमाचार सुनाने से प्रतिबंधित करती है, रोकती है, और क्यों नहीं प्रतिबंधित कर सकती है? 9, अपने प्रभाव के क्षेत्र में क्या आप लगातार अंधकार के राज्य को सक्रिय देख रहे हैं और उसका सामना कर रहे हैं? क्या इस अध्याय ने आपके ऊपर प्रभाव डाला है कि आप अधिक प्रभावशाली रूप से शैतान के बंधनों में जो पाए जाते हैं उन्हें आजाद कराएंगे? इस कार्य को आप कैसे करेंगे? 10, आपके प्रभाव के क्षेत्र में जो लोग पाए जाते हैं, क्या उन्हें उद्धार के संदेश के प्रचार की तुलना में राज्य के संदेश सुसमाचार से ज्यादा लाभ, फायदा होगा? आप उन तक राज्य का सुसमाचार कैसे पहुंचाएंगे?